नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक पहुंचे, 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात के साथ वार्ता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त 25,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, भारत अमेरिका के 26% शुल्क लगाने के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन करेगा। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है।
हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है।
श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ का लाभ सिर्फ मुस्लिमों को ही मिल सकता है और ये सही नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना।
वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी विभिन्न संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा ताकि इसे समावेशी बनाया जा सके। लोकसभा ने कल रात वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। और अब चलते हैं सीधे राज्यसभा, जहां इस समय वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। और
यहाँ जो लिखा हुआ 20 मिनट 20 से 25 हुआ, आपकी पार्टी का समय जाएगा, आपकी पार्टी का समय जाएगा।
नहीं, बोले आप मेरे पार्टी का समय में दे दो,
2 मिनट में और खत्म करें।
प्लीज साहब, मैं बोल रहा हूँ,
2 मिनट में
पार्टी के समय में 3 मिनट,
2 मिनट में और खत्म करें।
सर, ये 123 acres, 123 properties जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, ये लुटियंस दिल्ली जब बना रहे थे, न्यू दिल्ली जब बना रहे थे 1910 में, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ये एरिया अक्वायर किया था। जब मुसलमान जाके उनके मिले, वो बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगे, पोजीशन उनके पास ही रहेगा, बट गवर्नमेंट का नाम रहेगा जब तक ये सिटी नहीं बन जाती। बनने के बाद उन्होंने दोबारा वापस उसको वक्फ को दिया था। आज भी, जब से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है।
कांग्रेस सदस्य सैयद नसीर हुसैन इस समय राज्यसभा में विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया है। कानून क्षेत्र से लेकर प्रबुद्ध समूहों के विशेषज्ञों ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि ये विधेयक भ्रष्टाचार के कथित मामलों, कुप्रशासन और न्यायिक निगरानी के अभाव के कारण केंद्र और राज्य वक्फ बोर्डों को हो रही परेशानी का समाधान करेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विधि विशेषज्ञ और कर्नाटक में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपड़ी ने कहा कि इससे लोग वक्फ बोर्ड के फैसलों पर किसी भी विवाद को लेकर ऊपरी अदालतों में अपील करने के लिए सशक्त बनेंगे। इस बीच ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने कहा है कि ये विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में जरूरी पारदर्शिता लाएगा।
वक्फ कहीं नहीं जा रहा, वक्फ महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा। बस उसमें जो गलतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो सही होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट बेवा को, गरीब बच्चों को और मिस्किनों को, नादारों को, पसमांदा मुसलमानों को उनका हक और हकूक देने की बात करती है, तो इसमें इतनी घबराने की बात क्या है? बस ये है, कुछ लोगों के पास में ये पूरी पावर थी, अब वो चली जाएगी, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस विधेयक के जरिए व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा।
सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया।
और संसद भवन परिसर में इस समय मौजूद है हमारे संवाददाता दीपेंद्र, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी दीपेंद्र, आज राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश कर दिया गया विचार करने के लिए और पारित करने के लिए, क्या अब इस समय आपके पास ताजा अपडेट है चर्चा को लेकर?
जी विशाल, कल रात लोकसभा में पारित किए जाने के बाद जो है इस समय राज्यसभा में जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर जो है चर्चा जारी है। आज उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक के कई प्रावधानों और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाएगा। अभी इस समय बिल पर कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बोल रहे हैं। सदन में इस ऐतिहासिक कानून पर देर शाम तक विस्तृत चर्चा होनी है, जैसा कि कल रात लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर करीब 12 घंटे चर्चा हुई थी और सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों के प्रमुख नेताओं ने जो है इसमें अपने अपने विचार रखे थे। इसके अलावा सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुष्टि करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध है। आपको एक बात बताऊं विशाल, कि आज संसद भवन परिसर में डीएमके के सांसद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित किए जाने के विरोध में जो है काले कपड़े पहने हुए नजर आए। वहीं लोकसभा में इस समय लोक महत्व के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके बाद तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। विशाल, इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल चला और सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत जो है देश भर में 2845 खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई है और उन्हें सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जनजातीय मंत्री ने बताया कि देश भर में कुल 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 3.5 लाख एसटी छात्र जो है वो लाभान्वित होंगे। जी विशाल
जी, दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
सिर्फ 2 बोतल तेल? आप तो हर महीने 3 बोतल तेल लेती हैं शीला जी।
हाँ, लेकिन अब हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करना है।
वो क्यों?
क्योंकि अगर ओबेसिटी को रखना है दूर तो 10% कम तेल खाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं।
एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री सूर्या जुंगरुंग रेंगकेट ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। बैंकॉक पहुंचने पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आधिकारिक वार्ताओं में भाग लेने तथा भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने को इच्छुक हैं। भव्य स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैंड के गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं जो दोनों देशों के लोगों के जरिए लगातार समृद्ध हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी ने थाई रामायण रामकेन की प्रस्तुति देखी। उन्होंने इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें भारत और थाईलैंड के बीच के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दिखाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि रामायण एशिया के अनेक भागों में दिलों और परंपराओं को लगातार जोड़ रही है। वर्ष 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी थाईलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिटोंगतन शिनावत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे परस्पर संबंधों के सभी आयामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही द्विपक्षीय भागीदारी को और गति देने तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे विभिन्न द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान भी उपस्थित रहेंगे। कल होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। सम्मेलन में बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 को अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड नरेश और रानी से भी मिलने की संभावना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता को देखते हुए संगठन के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि नई व्यवस्था मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा विशिष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। अदालत ने मानवीय आधार पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने के फैसले के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए उचित उपाय करेगी।
देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखें।
घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटो क्षेत्र के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 291 अंक गिरकर 76,326 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंक फिसलकर 23,264 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक पहुंचे, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिटोंगतन शिनावत के साथ वार्ता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त 25,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा भारत अमरीका के 26% शुल्क लगाने के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।